अकेले कैसे आए? नंद बाबा को बोला, पति देव मेहर अकेले कैसे आए, कृष्ण बलराम क्यों नहीं साथ में? और यशोदा को इतना प्रेम कृष्ण बलराम से था, अपने पति से ज्यादा प्रेम कृष्ण से था, और कह दिया कि कृष्ण को छोड़ के अकेले आए थे तो तुम ही उधर मर गए होते। कभी ऐसे यशोदा बोला नहीं करते थे। नंद बाबा के आंखों में आंसू है और कहते हैं, यशोदा मैं तो वैसे भी मर गया होता, कृष्ण नहीं आया तो मेरे प्राण निकल गए होते। मैं मर गया होता तो प्रिय तुम भी नहीं रहती, तुम भी मेरी जुदाई में मर जाती। लेकिन जब कृष्ण आता, उसने कहा था मैं आऊंगा, और आता और पूछता यशोदा कहाँ है, नंद कहाँ है, और जब हमको नहीं देखता तो उसको दुख होता ना, जब हमको नहीं देखता कृष्ण तो उसको दुख होता ना। हम उसको सुखी करने के लिए रोज मरने को तैयार है, लेकिन उसको दुख नहीं होना चाहिए। इसको प्रेम बोलते हैं। हम दुख सहने को तैयार है, लेकिन भगवान आएंगे वापस, कहा था आऊंगा, और यहां पूछेंगे मैया कहां है, और कहेंगे मर गए, तो फिर उस वक्त कृष्ण को बहुत दुख नहीं होगा। इसको प्रेम बोलते हैं। तो भगवत गीता प्रेम, राज विद्या राज गुह्यम, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, ये प्रेम पवित्र है। गोपियों और कृष्ण का प्रेम पवित्र है, ये कोई स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है। ये वेदों की सुरतियां गोपी बन के आई है। दंडक आर्य के ऋषि राम जी को सीता के संग में जाते हुए देखा, और सीता का प्रेम जो राम जी के साथ देखा, उन ऋषियों ने राम जी को कहा हम आपको ऐसे प्रेम करना चाहते हैं जैसे सीता जी कर रही है। बोला इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, लेकिन कृष्ण अवतार में आप सब लोग गोपियां बन के आके मुझसे प्रेम करना। तो ये ऋषि है दंडकारण्य के, बड़ी तपस्या करके, स्त्रियां नहीं है, काम भोग की इच्छा नहीं है गोपियों के मन में, कृष्ण को सुख देने की इच्छा है। ये पवित्र है प्रेम, पवित्र मिलन उत्तम, ये उत्तम है। ये संसारी लगना लगने का प्रेम नहीं है, पूरा हो गया तो बस तलाक दे दिया और डाइवोर्स हो गया, ये डाइवोर्स वाला प्रेम नहीं है। 100 साल के लिए जुदा हो गए थे राधा और कृष्ण, लेकिन एक दूसरे को 24 आवर याद करते थे, कभी भूले नहीं। 100 ईयर्स सेपरेशन में रहे। प्रेम कैसा है? पवित्रम इदम उत्तमम। लेकिन एक बार भी इसको सीख लोगे तो क्या मरने के बाद ये मिलेगा हमको? नहीं 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 नहीं, प्रत्यक्षावगमम इधर अभी इस वक्त, गीता का ज्ञान अभी आज इस वक्त आपके लिए है, मरने के बाद के लिए नहीं है। ये पता नहीं कैसे है पंडितों ने उल्टी कथा बताई, पंडितों ने नहीं बताई, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने अपने धर्म के मजहब के प्रचार के लिए गीता मरने के बाद पढ़ के सुनाने के लिए। अरे जिंदा आदमी के लिए गीता है, मरने के बाद के लिए नहीं है। अरे मरने के बाद गीता को हाथ लगाते हैं, उनके दान कराते हैं, यही करते हैं। ये किसी बाहर के लोगों ने गीता का अपमान करने के लिए ऐसे कहा है। गीता का जीव प्रत्यक्षावगमन अभी इस वक्त, प्रत्यक्ष कहते हैं इसको, हाथ के कंगन को आरती की जरूरत नहीं होती। क्यों भाई मां, हाथ में जब कंगन डालती हो तो आप मिरर में देखते हैं क्या? हाथ के कंगन को आरसी की जरूरत होती है, समझते हैं? हाथ के ये कहावत है, कंगन डालते हाथ में तो आरसी में देखते हैं ना, नहीं देखते ना, आंख से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अवगमम, सामने देख सकते। अभी गीता की शिक्षा को पढ़ो, अभी सुखी हो जाओगे। कैसा है? सुसुखम, प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम, ये तो सुखमय है, आनंद में आपको पहुंचा देगा। वैसे भी वो प्रेम सुख देने वाला है कि नहीं है? इस दुनिया प्रेम सुख देने वाला है। प्रीतम मिले तो भी सुख, प्रीतम जुदा हो तब भी सुख, उसकी याद में सुख ही सुख होता है। सुसुखम, ये बड़ा सुखमय है गीता का ज्ञान। अव्ययम अविनाशी है, अव्यय द्वार अव्ययम शब्द आया, ये अविनाशी है, ये नाश होने वाला नहीं है। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्र जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद है उनका सार, सार किसको मतलब जूस, उनका रस निकाला है। सर्व उपनिषदों गावो दुर्गा गोपाल नंदना, अगर सारे वेद सारे पुराण सारे उपनिषद ये अगर गाय बन जाए तो गाय के अंदर सबसे मुख्य चीज क्या है, दूध। गाय का दूध रतन है, सारे शास्त्र गुरु की गाय से दूध निकाला किसने, दूध निकालना भी तो आना चाहिए ना। बेटी है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लड़की को, बेटा, बेटी को डॉटर, ये संस्कृत का शब्द है, डॉटर संस्कृत से आया, द्वेतर संस्कृत में है, द्वेतर, द्वेतर का मतलब दुहने वाली, गाय से दूध निकालती थी उसको द्वेतर बोलते थे, वो डॉटर हो गया अंग्रेजी में। पहले घर में लड़कियां गाय का दूध निकालती थी, ये हर घर में गाय हुआ करती थी, तो गाय का दूध भी तो किसी को निकालना है, गाय तो आपके घर में ना है, दूध नहीं निकालना है क्या करोगे, इसलिए मूर्खों को दूध निकालना आता नहीं, इसलिए गला काट के खा जाते हैं गले है? अरे जो असली चीज है उसमें निकालने नहीं आती है, और ना वो चमड़ा उतार के और मांस खा जाते हैं। अरे दूध पीना है वो तो 12 महीने पिलाएगी, और एक बार मांस खाओगे तो खत्म हो गया। ये तो अर्धकुक्की नेवा है, अर्धकुक्की नेवा समझते किसको बोलते हैं, अर्धकुक्की नेवा, कुक्की बोलते हैं हेन को, कुकड़ी को। एक कुक एक था हेन थी, वो रोज सोने का अंडा देती थी, गोल्डन एग, लेकिन उसको दाना भी खिलाना पड़ता था। तो मूर्ख ने कहा अंडा तो अच्छा है, सोने का दाने का खर्चा होता है, खाती मुंह से है, अंडा तो हेन से देती है, तो गले वाला ऐसा काट देती है केवल अंडा ही लेंगे, तो गला काटने के बाद अंडा देगी क्या, इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी लिया, गला काट दिया अंडा बंद हो गया। अब गाय मार दी तो दूध कहां से आएगा, दूध मिलता नहीं, अभी पाउडर का दूध पीते रहो, पाउडर किसका है भगवान जाने, ताजा गाय। अरे कृष्ण तो ऐसे ऐसे खड़ा होता था, गाय का दूध निकलता सीधा मुंह में जाता था, और मिश्री पहले मुंह में रख देता था, और गाय का दूध आता था मीठा होता था डायरेक्ट, बीच में बर्तन भी नहीं, डायरेक्ट पिया पड़ता था। अब है दूध कहां, है कहां दूध है कहां, गाय से निकलते हुए दूध को कभी देखो कितना, वो उस दूध का स्वाद ही कुछ और है, दूध निकालना भी तो आना चाहिए ना। गाय हो दूध नहीं निकालना आता है, इसलिए मार के खा जाओ बस हो गया, पता नहीं इसमें क्या है, अरे इसमें दूध है नहीं पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं तो जो देखा वो खा लिया है मूर्खो। ये तो ऐसे है कि आम के पेड़ में एक साल में एक बार आम होते हैं, नहीं नहीं हम पेड़ के अंदर आम जूस तो बड़ा अच्छा है, आम का जूस अच्छा होता है, तो कहां से आता है, पेड़ से आता है ना, आम का जूस कहां से आता है, आम पेड़ में होते हैं तो पेड़ से आता है ना, पेड़ को काटते और पेड़ के अंदर से जूस निकलेगा खाएंगे, पेड़ आम का खाओगे मीठा लगेगा, हाँ आम का पेड़ काट के टुकड़े टुकड़े करके खाओ फिर मीठा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, ये ऐसा काम है, और जूस न पीकर आम न पेड़ का, पेड़ काट रहे गाय काट रहे दूध नहीं पी रहे, मूर्ख है कि नहीं, इसको मूर्ख तो बोलते ही नहीं बोलते, शेयर पुलिसनेस, मूर्ख किसको बोले, इसको बुद्धि नहीं हो, अक्ल नहीं हो। अरे आम साल में एक बार नहीं, आम का पेड़ हर साल आम देगा, कितने साल आम देगा, नहीं नहीं हम तो आम को पेड़ को काट के खा जाएंगे बस हो गया मूर्खता। अरे गाय तुम्हारे 16 साल तक दूध पिलाएगी, और गाय प्रोडक्ट 16 बार बच्चे भी देगी, जरूरत नहीं है हमें पता नहीं। तो बात क्या कर रहे थे, सुसुखम, सुखमय है, सारे शास्त्रों का सार है गीता, सारे शास्त्र गाय बन गए, तो गोपाल नंदन वो गौपाल है, वो गाय से दूध निकालना एक से नहीं, मिलियंस ऑफ काउज का दूध निकालना जानता है कृष्ण, सारे शास्त्रों को गाय बनाकर उसके दूध रूपी दूध, गाय का दूध कैसे निकलता है ये भी आपने बताया, निकालता आदमी है लेकिन गाय दूध नहीं देती आदमी को, किसको देती है दूध गाय, अपने बच्चे को। तो गाय जिसने देखी होगी, गाय के दूध निकालने से पहले गाय के बछड़े को या बछड़ी को छोड़ा जाता है, वो जाके जब गाय के स्तन को ऐसे पिएगा तब गाय का दूध नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, अब जाके बैठो तो गाय दूध नहीं देगी। बच्चा जाएगा मुंह लगाएगा तब दूध निकलेगा, फिर थोड़ा दूध जब बच्चा पीता है तब दूध नीचे आता है, तब ग्वाला बछड़े को दूर करके और फिर दूध निकालता है। ऐसे मुंह नहीं निकलेगा गाय का जब तक बछड़ा मुंह नहीं लगाएगा। बछड़े का मुंह लगाओगे तभी दूध निकलेगा। आज अर्जुन को भगवान ने बछड़ा बनाया है, पार्थो वत्स, वत्स कहते हैं बछड़े को, और वत्स कहते हैं जिससे बहुत प्रेम होते हैं उसको। कितना प्रेम होता है, गाय है ना, गाय है। मैं आज गाय की बात कर रहा हूं क्योंकि हर घर में चार गाय होते थी, गृहस्थी के घर में चार गाय होना जरूरी है। अब तीन चार कुत्ते सबके घर में है, गाय की जगह पे कुत्ते। गाय होती थी गोपाल याद आता है, डाग है तो गार्ड भूल गए, हम डाग से काम चला रहे हैं। अब गाय होगी तो गोपाल याद आएगा ना, गाय गई और कुत्ते आए, कन्हैया तुम मत आना रे कल युग में। कन्हैया की जगह पे कुत्ता मिलेगा, गाय मिलेगी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। पहले हमारी माताएं सुबह चार बजे उठती थी, पहले काम नहा धो के क्या करती थी, अपने खेत से आए हुए गेहूं को पीसती थी, ताजा आटा जितना परिवार खाता है आटा तैयार हो गया, फिर जो रात को दूध जमाया था उसको मंथन करती थी, मक्खन निकालती थी, दही निकाल के रखती थी, थोड़ा मक्खन निकालती थी, फिर छाछ रखती थी। दूध तैयार हो गया, सुबह हो गई, गाय का दूध निकाल के गर्म करती थी। अब बच्चे को उठाया, अभी आटा जो पीसा है खुद ने उसका रोटी बनाया, उसके ऊपर मक्खन वो रखा जो अभी गाय के दूध से बनाया है, दही दे दिया और गर्म दूध जाते हुए बच्चे को अभी जो निकाला है गाय से वो दिया। वो बच्चा जब दूध पी के रोटी के ऊपर मक्खन खा के जाता था तो माँ पिता माता के चरण को छू के आशीर्वाद लेता था, उनकी सेवा करता था। और ये सभ्यता हमारी ये गीता और भागवत और रामायण के शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चलती। अब मशीन भी यहाँ कहाँ है, आटा कहाँ से, आटा कहाँ से आता है, कोई साउथ अफ्रीका से आता है, कोई और पता नहीं कहाँ से आता है, कब का पीसा हुआ है कुछ मालूम नहीं, इस मिलियन नम का है कि अगले मिलियन नम का है कुछ मालूम नहीं, और बटर कब का है, गटर से निकला हुआ कुछ मालूम नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है अपनी माँ का निकला हुआ। वो खाने वाला जमाना चला गया, वो ये आपने देखा है किसी ने, ये घर में होता था पहले, किसी को याद आता है ये हमारा कल्चर था पुराना। जिस दिन ये कल्चर वापस, जब गीता पढ़ेंगे तो ये कल्चर वापस आएगा। प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में इस्कॉन को स्थापना करने के बाद कहा कि अब मैं चाहता हूं कि कल्चर वापस स्थापित करूं, वो वैदिक कल्चर कि गाय का दूध और ताजा आटा हर एक को। अभी कभी ये मशीन जो घूमती है, इसका आटा जो होता है ये इतनी फास्ट घूमती है, इतनी फास्ट घूमती है, इसके अंदर जो खाने के लिए जरूरी चीजें वो सब जल जाती है। देयर आर बर्नड बाय द वेरी मच फ्रैक्शन ऑफ द फास्ट मोशन ऑफ टू स्टोन्स, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जस्ट भूसा है, भूसा खाएगा, भूसे का ब्रेन, और फिर दूध नहीं पिएगा तो दिमाग में गीता आएगी कहां से। अब तो बच्चे को आप क्या खिलाते हैं, क्या सुबह स्कूल जाता है बच्चे को क्या देते हैं, मक्खन गाय का निकाला हुआ, आटे से बनी हुई बहुत सुंदर घी में तली हुई रोटी, नहीं क्या देते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स बहुत है सभी तरह से है क्या, है क्या उसको घुमा के क्या, वो बीट है और वो कान है, जो रुपये का होना चाहिए था वो 10 रुपये का आपके घर में मार रहे हैं और कुछ भी नहीं। वही चीज जो प्रभुपाद जी यहां आए थे तब यहां क्या होता था, आपका शुगर केन मॉरिशस लोग बनाते थे, केवल शुगर जूस यहां बनाकर और यहां से स्टीमर भेज के इंग्लैंड भेजते थे और उस जूस से शुगर वहां से बन के और हम ही उनसे शुगर लेते थे 10 गुना ज्यादा कीमत के। हमारा रक्त हमारी शुगर हमको महंगी। अभी भी वही बीच वीट से बीटा बेस बना लेकिन 10 रुपये की जगह पे 100 रुपये, तो कितना 10 टाइम मोर एक्सपेंस करना पड़ा उसी चीज के ऊपर। तो भगवद गीता की शिक्षा हमारे को मानव कैसे रहते थे ये सिखाएगी। इस वक्त लोग पशु की तरह रह रहे हैं, दे आर लिविंग जस्ट लाइक एनिमल्स, सिंपली रनिंग हियर एंड देयर, किसके लिए, खाना पीने के लिए, बस खाना पीना कहां मिलेगा और कुछ सोच नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समान, आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय घर बनाना क्योंकि कोई चोरी करके न जाए, ताला लगाओ, भय मैथुन्य विवाह करो शादी करो एंजॉय करो, पशु भी समान आ, ये तो पशु भी कर रहे हैं, ये तो पशु भी चार काम कर रहे हैं। मानव की क्या मानता है, धर्म अधिको विशेष, अरे धर्म विशेष है, धर्म के ऊपर नहीं चलेंगे तो पशु के समान है। और ये भगवद गीता धर्म धर्म शास्त्र है, ये धर्म का शास्त्र है, रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का शास्त्र है, मर्यादा शरीर का धर्म है, माता पिता से कैसे उठना बैठना, बेटे का धर्म क्या, पत्नी का धर्म क्या, भाई का धर्म क्या, ये रामायण सिखाती है, आत्मा का धर्म क्या, ये भगवद गीता सिखाती है। तो शरीर की शिक्षा मर्यादा क्या है उसकी आवश्यकता है, लेकिन शरीर तो फिर भी यहां छूट जाएगा, लेकिन आत्मा हमारी असली पहचान है और आत्मा की शिक्षा का ये भगवद गीता सागर है। हर घर में भगवद गीता होनी चाहिए और हर बच्चे को भगवद गीता की शिक्षा देना अनिवार्य है। जैसे बच्चे के लिए पोलियो के ड्राफ्ट लाना जरूरी है, इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चे को टीका लगाना जरूरी है, लगाते हो कि नहीं लगाते, क्यों लगाते, क्यों लगाते, हाँ बीमारी में लगे इसलिए ना, ऐसे दिमाग खराब ना हो जाए बच्चे का आगे करके मां बाप को छोड़ के चला जाए, उसके लिए कौन सा टीका, कोई टीका है ऐसा अस्पताल में कि उसको दो ड्राफ्ट पिला दे बड़ा होकर माता पिता की भगवान की सेवा करे, नहीं है ना। ये भगवद गीता सिखा दो, ये वो टीका, ये इम्यूनाइजेशन है, ये इम्यूनाइजेशन है, हर घर के अंदर हर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। ये श्लोक जिसके याद होंगे वो बच्चा सेवा करेगा, ये उससे ज्यादा इम्यूनाइजेशन की जरूरत है हमारे को संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की, हमारी संस्कृति, संस्कृति का मतलब हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसकी शिक्षा की अति आवश्यकता है। कभी कभी दुख से कहते थे भारत के पुराने धर्मात्मा लोग, अभी भी आज दुनिया में ईसाई का बच्चा बाइबल को पढ़ लेता है, मोहम्मदन बच्चे को बचपन में कुरान पढ़ाते हैं, दुर्भाग्य से भारत वैदिक संस्कृति के बच्चे को गीता के अभ्यास करने का अवसर नहीं मिलता है घरों में। वो अच्छा है, वो तो पढ़ते हैं कुछ, हम उतना भी नहीं करते। पहले कम से कम इस आईलैंड में बच्चे बड़े जो आप लोग हैं कभी रामायण पढ़ते थे, अब तो बच्चे उसको भी नहीं पढ़ते, संस्कृति समाप्त होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति का क्या पहचान है, जाके देखो किसी भी सी बीच के ऊपर, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बीच के ऊपर जाके देखो पाश्चात्य लोग कैसे घूमते हैं, वो संस्कृति चाहिए क्या। कपड़े कुछ पहने होते हैं उनको, नहीं होते ना पहने हुए, किसी ने मुझे कहा मैं किसी को देखता हूं कपड़े नहीं पहने होते हैं तो मैं एजुकेट होता हूं, मैंने बोला गधों को कपड़े नहीं, कुत्तों को कपड़े नहीं, बिल्लियों को कपड़े नहीं, इतने सारे पशु घूमते किसी को कपड़े नहीं, तुम्हारे को इंटेंशन नहीं होती, तुम समझे कुछ और पशु घूम रहे क्या फर्क पड़ता है, अरे सुंदर अगर छोटे कपड़े पहन से आदमी होता तो गधा अच्छा लगता, घोड़ा अच्छा लगता, कुत्ता आज पलटता कुछ भी नहीं करता है, इस मुगर का है क्या? यह संस्कृति क्या से हो गया? तुम ये भगवद गीता पढ़ो, समझो, सीखो, नहीं तो आप तो चले जाओगे, पीछे आने वाले भविष्य की पीढ़ियां सब कुछ भूल जाएंगी, दुनिया सारी हाथ आ जाए, आत्मा भटक जाए। अभी तो चलो अच्छी तरह से गुजर गए, लेकिन जिस तरीके से हम जी रहे पशु की जूनी में चले जाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। भगवद गीता की शिक्षा हर एक सभ्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। लेकिन भारतवासियों का पहला अधिकार इसलिए है कि भगवद गीता का आविर्भाव प्रकृति ही भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र में हुआ, तो हमारा ये सौभाग्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते भारत भूमि से हाइला जन्म ज्ञान जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले भगवद गीता को पढ़ ले, भागवत रामायण को पढ़ ले, अपने जीवन को सफल कर ले और फिर दूसरों का उद्धार कर, फिर दूसरों को ये शिक्षा दे। पूरी दुनिया में जो भी परेशानी है उसका कारण हम भारत संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि हमने लोगों को ये भगवत गीता और भागवत की और रामायण की शिक्षा नहीं दी है, तब जो दुनिया के दुखी है, दुनिया के लोग बिगड़े हैं और हम उसका दुख भोग रहे हैं। हमारी जिम्मेवार हमें, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्योर्स इन दी वर्ल्ड बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू कैरी आउट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वन पर्सन श्रील प्रभुपाद व्हेन ही डिड इट ही रिवोल्यूशनाइज्ड दी होल वर्ल्ड। आप सबका ये दायित्व है, ये आपकी जवाबदारी है, यू हैव टू रीड दिस। सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन को सफल करना चाहिए। केवल शरीर के पीछे मत भागो, आत्मा जो आपकी पहचान है उसको मत भूलो। भगवद गीता पहली शुरू ही यहां से होती है, देहीन वस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यते। ये भगवद गीता की पहली शिक्षा का श्लोक है। देहीन वस्मिन, इस देही के अंदर, यथा देहे, जैसे इसका मालिक है। अरे देही का मालिक कोई और है, ये घर है ना, इस घर का मालिक कौन है? आप इस घर में आए हैं कि घर के मालिक के पास आए हो? हे जगुजी कृष्णदास के श्रीमान जगुजी कृष्णदास के घर आए हो कि घर में आए हो? हाँ जी, घर इम्पॉर्टेंट है कि जगुजी इम्पॉर्टेंट है? बोलो, जगुजी इम्पॉर्टेंट है, घर इम्पॉर्टेंट है? जगुजी इम्पॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो शरीर के अंदर इसका मालिक बैठा है आत्मा, इम्पॉर्टेंट वो है कि शरीर है? शरीर के लिए तो हम बहुत बड़ा टाइम लगाते हैं, रोज संवारने के लिए, हाँ, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, सोने के लिए पलंग चाहिए, खाने के लिए 3 टाइम भोजन चाहिए, पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए, बहुत शरीर के लिए, तो फिर तो मेकअप के लिए बहुत सामान समय चाहिए, इतना टाइम तो लगा देते हैं शरीर के लिए। आत्मा के लिए कभी चिंता किया? तो इम्पॉर्टेंट आत्मा है उसको भूल गए और शरीर के लिए सारा समय व्यर्थ कर गंवा रहे हैं। शरीर को ठीक रखना जरूरी है, घर को ठीक रखेंगे तब ये छाता लगाया है तब बैठ रहे हैं, भोजन है तब खा रहे हैं, तो घर जरूरी जरूर है, लेकिन घर का मालिक है तभी सब ठीक है ना। मालिक नहीं रहेगा तो घर में कोई आएगा क्या? आत्मा नहीं रहती है तो शरीर किसी काम का है क्या? अपने सगे संबंधी चाचे मामे भाई बेटे बहू का सर शरीर आत्मा निकलने के बाद कोई घर में रखता है? उठा के जाके शमशान भूमि में छोड़ के आते हैं कि छोड़ के आते हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? आत्मा के शरीर, आत्मा, तो उस आत्मा के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए ना। हम है आत्मा, हम शरीर नहीं है, शरीर हमको मिला है गाड़ी जैसे हमारे पास है, काय के लिए, अपने काम पे आने जाने के लिए, ऐसे शरीर हमको भगवान के पास जाने के लिए मिला है मानव का। देही वस्मिन यथा देहे, अरे कैसे पता कैसे लगे? बोला कौमारम यौवनम जरा, आज से 55 ईयर्स अर्ली मैं छोटा बच्चा था कि नहीं था? आप लोग सब छोटे बच्चे थे कि नहीं थे आज से 50, 25, 30, 20 साल पहले? आपको मालूम है आप बच्चे थे, आपको याद है ना, स्कूल जाते थे, ठीक है? अब मैं कहूं कि वो बच्चा आप थे वो कहां है, दिखाओ कहां गया बच्चा, जो आप बच्चे थे वो कहां गए, कहीं फोटो हो घर में तो बोला ये मेरा बचपन का फोटो है, कहां गया बच्चा, फिनिश फिनिश हो गया कि नहीं, बच्चा कहां है। 30-31 साल पहले हम जवान थे, यंग थे, कॉलेज गए, शादी हुई, घूमे फिरे, लेकिन आज वो कहां है, यंग शरीर कहां गया मेरा, वेयर इज दैट यंग, कहां गया नौजवान शरीर, कहां चला गया, फिनिश। लेकिन मैं तो बैठा हूं ना, मुझे याद है मैं बच्चा था, तो मैं ही तो बच्चा था ना, शरीर नहीं है लेकिन मैं तो बैठा हूं ना, आई एम स्टिल हियर, आई वॉज चाइल्ड, आई रिमेंबर बट वेर इज चाइल्ड बॉडी, आई वॉज यंग आई रिमेंबर बट वेर इज माई यंग बॉडी, मेरी जवानी का शरीर चला गया मैं तो बैठा हूं, मेरा बचपन का शरीर चला गया मैं तो बैठा हूं, ये बुढ़ापे का शरीर भी चला गया तब भी तो मैं रहूंगा ना, इसलिए आई एम स्टिल ज्योमेट्री में ऐसे ही क्वेश्चन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बचपन का शरीर गया मैं बैठा हूं, जवानी का शरीर गया मैं बैठा हूं, तो बुढ़ापे का शरीर गया तब भी तो मैं रहूंगा ना, ये शिक्षा भगवद गीता की पहला पाठ है, हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर मानव का मिलना ये तो ये राम गीता है, राम जी कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये अपनी सारी ही अयोध्या की जनता को बिठाकर राम जी राम गीता बता रहे, इसको राम गीता कहते हैं कि मानव का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए बहुत चाहते हैं कि मानव बन जाए, क्यों, बोला देवता के शरीर में इतना सुख है, इतना ऐश है, इतना भोग है, इतनी इंजॉयमेंट है, भगवान का भजन नहीं हो सकता, मानव शरीर में आते हैं तो भगवान को प्राप्त करना केवल मानव शरीर में संभव है, तो मानव का शरीर मिले और फिर भी वैदिक संस्कृति भारतीय शिक्षा के अनुसार जिसका जन्म हुआ है, वैदिक संस्कृति में आप सब लोग वैदिक संस्कृति के हो, वो उससे भी दुर्लभ है, और इस शरीर में मानव शरीर मिले, भारत संस्कृति मिले और फिर सत्संग मिले तो ये उससे भी दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरोय भव सिंधु रे, ये भव सागर पार करना है तो मानव जन्म में सत्संग ही एक सहारा है, और सत्संग का अर्थ है भगवद गीता का संग, भगवद गीता सत्य शास्त्र है, सत्य का संग भगवान का संग, गीता शास्त्र का संग, गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान के वचन और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अर्जुन से कृष्ण बात कर रहा है, आप पढ़ोगे तो कृष्ण आपसे बात करेगा, आप इसको पढ़ो तो आपको कृष्ण से बात साक्षात्कार है, बात करना है आमने सामने, इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारे समस्याओं का समाधान गीता में है, टेक इट सीरियसली, टेक एडवांटेज, साहित्य आप बहुत लाभ उठाओ इसका, भगवान का नाम जपो और भगवत गीता समय मिले तो सीखने का प्रयास करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धन्यवाद, एक घंटा हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग आर देयर एनी क्वेश्चन आर क्यूरी, हरि बोल, बच्चे को भी गीता सुनकर सुखी है, लोग कहते हैं बोर होते हैं, ये कुछ हो रहा है, देखो किसी कोई प्रश्न है, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और जिज्ञासा किसी का, नो क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है बच्चे, क्या क्वेश्चन है बेटा बोलो, से समथिंग बोलो बच्चा, क्या पूछता, किसी का इच्छा है कुछ पूछने का तो पूछ सकते हैं, सत्संग के विषय में जो बोला अभी अथवा